वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम आठवां स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 13। अध्याय का नाम है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। तं त्वं वयं नाथ सुमेज्जहानम् सरोजनाभाति चरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गता निमृतम् अद्य सर्वे गजादवार्ता इव गगामिरम्भा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की तम हे भगवान, त्वाम आपको, वयम हम सभी, नाथ हे स्वामी, सुमिज्जहानम आप अपनी समस्त महिमा के साथ अब हमारे समक्ष प्रकट होने वाले। सरोजनाभ कमल फूल के समान नाभि वाले भगवान, अथवा जिनकी नाभि से कमल निकलता है, अतिचीरा दीद काल तक इप्सिता चाहते हुए अर्थम जीवन के चरम लक्ष्य के लिए दृष्ट्वा देखकर गता अपने दृष्टि के अंतर्गत निवृतम दिव्य सुख अद्य आज सर्वे हम सभी गजा हाथी दवारता जंगल की अग्नि से पीड़ित एव सदृश गागम अम्भा गंगा के जल से, जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार हे कमलनाथ प्रभु, चूंकि आप हमारे समक्ष अब प्रकट हुए हैं, अतः हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतः आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है। तात्पर्य भगवत भक्त भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वे कभी यह मांग पेश नहीं करते कि भगवान उनके समक्ष आए, क्योंकि भक्त ऐसी मांग को भक्ति के विरुद्ध मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में यही पाठ पढ़ाया है, अदर्शनान मर महताम करो तुवा। भक्त भगवान का साक्षात्कार करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, किंतु यदि जन्म जन्मांतर तक भगवान के दर्शन ना होने से उसका हृदय टूट भी जाए तो वह भगवान से प्रकट होने की मांग कभी नहीं करेगा। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अतः इस श्लोक में अति चिरप्तार्थम शब्द आया है, जिसका अर्थ है भक्त भगवान का दर्शन पाने के लिए दीर्घ समय से आकांक्षा करता है। यदि भगवान स्वेच्छा से भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने पर किया था। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तो उन्हें कोई वर मांगने की इच्छा नहीं हुई। वे भगवान को देखकर ही इतने तुष्ट हो गए थे कि उन्होंने भगवान से कोई वर मांगना नहीं चाहा। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। शुद्ध भक्त चाहे भगवान का दर्शन कर सके या नहीं, वह सदैव इस आशा से भगवान की सेवा भक्ति करता है कि कभी ना कभी वे उस पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे उनका साक्षात दर्शन हो सकेगा। ओम अज्ञानात् निरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहम् श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्मिशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भागवत कक्षा में। वास्तव में मेरी इच्छा थी कि आज वंशीवर्धन प्रभु क्लास ले बट सम्भाव उन्होंने एग्री नहीं किया। सभी भक्तों से प्रार्थना करते हुए इस श्लोकों को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रसंग है देवता तथा असुर द्वारा संधि की घोषणा, दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध करने के कारण इंद्र को और सभी देवताओं को एक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। दुर्वासा मुनि ने अपने महाप्रसाद की गार्लैंड इंद्र को दी। इंद्र के पास, इंद्र तो सुरेंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, उनके पास तो अच्छी अच्छी फूलों की मालाओं की पैसे पहले की कमी तो होगी नहीं। एक माला दी एक साधु ने, तो इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत पे डाल दिया। अब हाथी क्या जानेगा क्या इंपॉर्टेंस है, ये दुर्वासा मुनि का महाप्रसाद है। हाथी ने उस माला को कुचल दिया। जब ये देखा दुर्वासा मुनि ने तो उनको श्राप दे दिया, उनका सारा ऐश्वर्य से वो विहीन हो गए। असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया, सभी देवताओं को स्वर्गलोक छोड़ के भागना पड़ा। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको ले गए श्वेत द्वीप के तट पे और ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये प्रार्थनाएं हैं, इनकी प्रार्थना सुनकर, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो यहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तम त्वम वयम नाथ सुमज्जहानम, कि ये नाथ अब अपने सारी सभी ऐश्वर्यों के साथ हमारे सामने प्रकट हुए हो। सरोज नाभ, भगवान का एक नाम जैसे पद्म नाभ है, सरोज नाभ, सरोज का मतलब कमल, जिनकी नाभि कमल के समान है या जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। अति चिरित सिद्धार्थ, बहुत देर हो गई आपके लिए, हम प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि आपने लोगों को छोड़ दिया, सब असुरों का राज है, तो एक एक क्षण उनके लिए कैसा लग रहा था। गजा दवारता, जैसे कि हाथी जो है वो दावालन में फंस जाए। जंगल में का राजा तो शेर है, लेकिन जंगल का सबसे बड़ा जो आकार में देखे तो कौन सा पशु होगा, हाथी होगा। तो हाथी बहुत शक्तिशाली है, हाथी चाहे तो बड़े बड़े पेड़ों को खाड़ के फेंक सकते हैं। अगर हमारे शहर में आ जाए किसी बुलडोजर की आवश्यकता नहीं, हाथी अपने पांव से सब कुछ कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली पशु जब जंगल में आग लगती है तो बिल्कुल असहाय हो जाता है, बहुत पीड़ित होता है, कुछ भी अपनी रक्षा नहीं कर पाता। और उसको आराम राहत कब मिलती है, जब उसी जंगल के तट पे गंगा में जाके वो स्नान करता है तो उस जंगल की अग्नि से उसको राहत मिलती है। तो हमारी ये स्थिति थी, बहुत समय से हम इस दामानल में थे, अब आपके दर्शन प्राप्त करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे हाथी, क्योंकि हाथी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो भगवान की भक्ति से वंचित है तो हमेशा दामानल में ही है। और उसको राहत कब मिलेगी, जब भगवान के चरणामृत या गंगा में वो स्नान करेगा, शरण लेगा भगवान की, तब उसको वो राहत मिलेगी। तो देवताओं को राहत मिल रही है जब उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवत भक्त भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहते हैं। सही कह रहे हैं प्रभुपाद, आप में से कितने भक्त लोग अत्यंत उत्सुक हैं भगवान के साक्षात फेस टू फेस दर्शन के लिए, ज्यादा उत्साह नहीं है, है कि नहीं है? अच्छा, तो अत्यंत उत्सुक होना चाहिए हमें भगवान के दर्शन के लिए। ये भगवान के दर्शन फेस टू फेस साक्षात, ये हमारे आत्म साक्षात्कार की परिकाष्ठा है। और प्रभुपाद कई बार लेक्चर्स में बोलते हैं कि हम अगर 16 माला ध्यान पूर्वक करेंगे, सभी नियमों का अच्छे ढंग से पालन करेंगे, सो वी कैन गो बैक टू गॉड हेड एंड सी कृष्णा फेस टू फेस, डांस विद कृष्णा, प्ले विद कृष्णा। सुने आपने प्रभुपाद के लेक्चर्स में? तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं। और हर एक भक्त के अंदर यह अत्यंत उत्सुकता होनी चाहिए भगवान को साक्षात दर्शन करने के लिए। भक्तों को छोड़ो, देवताओं को छोड़ो, स्वयं महाविष्णु बड़े उत्सुक रहते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कृष्णा पुस्तक में वो लीला पढ़ते हैं किस प्रकार से महाविष्णु द्वारका में एक सारे ब्राह्मण के पुत्रों को हर लेते हैं, 9 पुत्रों को हरते हैं। अर्जुन को भी बहुत गुस्सा आता है, अर्जुन का विश्वास कृष्ण से कम हो जाता है, कैसे राजा हैं ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पा रहे। कितनी बड़ी लीला रचते हैं महाविष्णु, और फिर कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रथ पर बैठा कर महाविष्णु के लोक में ले जाते हैं। तो सारी की सारी लीला महाविष्णु रचते हैं केवल कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो महाविष्णु स्वयं इतने उत्सुक रहते हैं कृष्ण का साक्षात दर्शन करने के लिए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं जब वो जगन्नाथपुरी में पहले जा रहे थे संन्यास लेके, जैसे अथानाल पे पहुंचे उन्होंने जगन्नाथपुरी के मंदिर के चक्र को देखा तो उनको दिखाई दिया श्याम सुंदर रूप, और महाप्रभु हवा की गति से तेज भागे अपने सभी संगियों को पीछे छोड़ते हुए और सीधा जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। और जगन्नाथ जी को देखते ही जगह जगह कह के उनके आलिंगन करने के लिए आल्टर के अंदर चले गए और बिल्कुल आलिंगन करने के लिए दौड़े। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको रुका और महाप्रभु वहीं पे मूर्छित हो गए। फिर उनको सार्वभौम प्रभु अपने घर में ले गए वापस के बाद हम देखते हैं उन्होंने उनका उद्धार किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने आश्वासन दिया कि अब मैं भगवान के दर्शन करूंगा गरुड़ स्तंभ से पीछे, कोई रिस्क नहीं लूंगा, आपके लिए कोई एम्बेरसमेंट नहीं करूंगा। तो महाप्रभु दर्शन करते थे गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े हो गए। और एक बार ऐसे महाप्रभु ऐसे दर्शन कर रहे थे, बहुत भीड़ थी मंदिर में, तभी एक महिला आती है। वो महिला ने क्या किया, महाप्रभु के कंधे पे पांव रख के गरुड़ स्तंभ पे चढ़ के भगवान के दर्शन करने लगे। तो जब महाप्रभु के असिस्टेंट गोविंद ने यह देखा, अरे सन्यासी के पांव कंधों पर पांव रख के और गरुड़ स्तंभ, गरुड़ जी भी भगवान के भक्त हैं उन पर भी पांव रख रहे हो, दो अपराध एक साथ। उन्होंने महिला को पीछे उतर, नीचे उतर, क्या कर रही हो, देखने रही, भगवान के ऊपर पांव रख दिया। तो महिला बेचारे नीचे उतर गए। जब महिला नीचे उतरी लेकिन महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने गोविंद को बुला रहे, आदिवासी तुम इस पे गुस्सा कर रहे हो, देख नहीं रहे इसके अंदर भगवान को दर्शन करने की कितनी उत्सुकता है। उन्होंने बोला कि भगवान ने जगन्नाथ जी ने इस पे इतनी कृपा की है कि उनके दर्शन के लिए इतनी लालायत है, कम मेरे में ऐसी लालसा उत्पन्न होगी भगवान के दर्शन के लिए। यह है महाप्रभु के भाव। हालांकि वो माता जी अपराध कर रही थी लेकिन महाप्रभु क्या देख रहे थे कि उनके अंदर दर्शन करने की कितनी लालसा है। कृपया करके आप लोग इससे कोई हिंट मत लेना कि माता जी लोग, एक बार क्या हुआ जन्माष्टमी में तो ऐसे ही दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन होती है, सबको आगे करते हैं। तो हमें याद है कुछ साल पहले माता जी एक थी, निकली यहां से, यहां पे टेंट था पूरा बंद किया हुआ था, वॉलंटियर्स उनको आगे कर रहे थे, जान नहीं रहे थे, थोड़ा सा मौका पाके टेंट के नीचे से घुसे। अब वॉलंटियर्स कैसे पीछे पीछे पूरा घुस के ये स्टेज जो लगा होता है उसके ऊपर चढ़ के वहां आके फिर वो नृत्य करने लगे। तो कई बार इतने उत्सुक होते हैं लोग, सारे नियम नियम तोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग कृपया करके ऐसा मत करें। तो ये ईगरनेस, ये उत्साह भगवान के दर्शन करने के लिए, ये प्रत्येक भक्त में होना चाहिए। क्योंकि हमारे इष्ट है जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनका निश्चित रूप से फेस टू फेस दर्शन करेंगे। लेकिन भक्त कभी ये डिमांड नहीं करते, ये मांग नहीं करते कि भगवान अगर आप हैं, अगर आप मूर्ति नहीं है तो प्रकट होइए हमारे सामने। प्रभुपाद कहते हैं ऐसी मांग करना भक्ति के विरुद्ध है। एक भक्त कभी भी मांग नहीं करेगा। मांग करना अपने आप में एक कृतज्ञता का लक्षण है। वास्तव में अगर कोई जाए, जैसे परसों वैष्णव महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे, भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ रहेगा किस प्रकार से भगवान हमें सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है सारा उसका दूध का अरेंजमेंट किया। तो कौन व्यक्ति होगा जो भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होगा? तो उसको ऐसी मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप प्रकट हुई है। लेकिन कोई मांग कर रहा है वो कृतज्ञता का लक्षण है। एक भक्त को कभी भी भगवान से, गुरु से, भक्तों से मांग नहीं करनी चाहिए। हां, अगर कोई इच्छा है तो हम उसके लिए निवेदन कर सकते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए, बट मांग करना कृतज्ञता का लक्षण है। मांग करना स्वामित्व भाव का लक्षण है कि मुझे ये चाहिए, जबकि हम तो भगवान के दास हैं। तो भक्त कभी मांग नहीं करता। लेकिन यहां पे लिखा है कि कुछ लोग मांग करते हैं कि हां भगवान आप प्रकट होइए। बताया गया इस भौतिक जगत को तमस अंधकार है। अगर इस अंधकार में जगत में अगर हम सूर्य को देखना चाहें तो अपने प्रयासों से हम सूर्य को नहीं देख सकते। सूर्य को हम सूर्य के प्रकाश से ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने टॉर्च लाइट लगा के रात को 12 बजे ऊपर डालेंगे, देखो सूर्य को देखें। अपने मानव अपने अपने बनाए हुए साधनों से सूर्य को प्रकट नहीं करवा सकता या सूर्य को देख नहीं सकता। सूर्य के प्रकाश से ही हम सूर्य का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रकाश से ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान का प्रकाश है भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की कृपा। जब भगवान कृपा करेंगे तभी भगवान प्रकट होंगे। राधा राधिका रमन जी प्रकट हो गए। राधा राधिका रमन कृष्ण भगवान जगन्नाथ की जय। तो भगवान अपनी कृपा से प्रकट होते हैं। भक्त अपना प्रयास करके भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन भक्त मांग नहीं कर सकते कि आपको प्रकट होना पड़ेगा। हम देखते हैं एक बार हम एजोलिनस राधाराम स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहे थे, तो राधाराम स्वामी महाराज ने बहुत स्टेटमेंट दी जो कि बहुत ही हृदय को छूने वाली स्टेटमेंट थी दर्शन के ही लक्ष्य परिपेक्ष में। महाराज कह रहे थे टू सी इज टू सर्व एंड टू सर्व इज टू सी। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना पड़ेगा। टू सी इज टू सर्व एंड टू सर्व इज टू सी। दर्शन करना सेवा है और सेवा करना दर्शन है। यानी कि जब हम दर्शन करने आए तो सेवा के भाव से। ये जो राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, जगन्नाथ बलदेव सुता जी के विग्रह हैं, ये मेरी खुशी के लिए नहीं है यहां खड़े हुए, मैं इनकी खुशी के लिए यहां पे आया हूं। जब भी हम विग्रह को पास जाएं सेवा की भावना से, प्रार्थना के मूड से, हम जब दर्शन कर रहे हैं, हम इन आंखों से, इन चमड़े की आंखों से हमें तो केवल पत्थर ही नजर आते हैं। अगर वास्तव में हमें भगवान इस संसार से ज्यादा आकर्षित लगते तो हम हिल ही ना पाते यहां से। अभी भी हमारे लिए संसार ज्यादा आकर्षक है। संसार तो छोड़ो, मैं अपने आप को भगवान से ज्यादा आकर्षक पाता हूं। हम रोज अपने आप को निहारते हैं, जितनी रुचि से हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं क्या उतनी रुचि से हम भगवान को देखते हैं? अपनी दर्शन आरती प्रतिदिन हम करते हैं, और कोई ना बोले तो अपने को भोग लगाते हैं, अपनी दर्शन आरती करते हैं सच। तो भगवान को देखने के लिए जो सेवा का भाव है, टू सी इज टू सर्व, तभी भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। भगवान के सामने में आए, भगवान का हम गुणगान करें अलग अलग प्रार्थनाओं से, भगवान के सामने हम खूब उत्साहपूर्वक नाचें, शिला प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है और विग्रहों के सामने नाचता है, वो साक्षात भगवान के दर्शन कर सकता है, आत्म साक्षात की सारी विधियों को वो पार कर लेगा केवल भगवान के सामने उत्साहपूर्वक कीर्तन करने से। हम भगवान को नहीं देखते, भगवान हमें देखते हैं, हमारे स्थूल शरीर को भी, हमारे सूक्ष्म शरीर को भी भगवान देखते हैं। ये भक्त किस भाव से मेरे सामने खड़ा है, किस भाव से नृत्य कर रहा है, कितनी मुश्किलों का सामना करके ये मेरे दर्शन करने आया है, ये कितना परेशान है फिर भी उत्साहपूर्वक नाच रहा है, कितना शरीर से थका हुआ है फिर भी मेरे दर्शन के लिए आया है, कितना सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती के लिए आया है, कितनी कठिनाइयों का सामना करके आया है। तो भगवान देखते हैं, सब जानते हैं भगवान, भगवान हमारा दर्शन करते हैं। इसलिए हम आए सेवा के भाव से, हम सेवक हैं, हम कोई भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज कहते हैं, वी आर नॉट द सीयर, ही इज द सीयर, दृष्टा वो है, हम नहीं। और जब एक शुद्ध भक्त भगवान के सामने खड़ा होता है तो चैतन्य चैतामृत वर्णन आता है कि जो भगवान है वो शुद्ध भक्त के हृदय में अपना दर्शन करते हैं। सत प्रेम दर्पण, कृष्ण कहते हैं जो राधा रानी का हृदय है वो दर्पण के समान है जिसमें मैं अपने माधुर्य का दर्शन करता हूं। तो भगवान तो अपना दर्शन करते हैं। गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जो भगवान दर्शन करते हैं, अक्सर जब हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं हम तो अपना प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं, लेकिन भगवान अपना दर्शन करते हैं प्रतिबिंब नहीं, अपना बिंब देखते हैं, एज इट इज देखते हैं दर्शन। तो वो भगवान अपना दर्शन शुद्ध भक्त के हृदय में जो प्रेम से भरा हुआ उसमें करते हैं। हम लोग जब भी भगवान के सामने आए हमारा दर्शन सेवा होनी चाहिए, यानी कि मनमाने ढंग से हम आए और हम अपनी इच्छा से, ये विग्रह तो है दिन में कम से कम 12 घंटे तो खड़े ही रहते हैं दर्शन के लिए, कभी भी दर्शन कर लेंगे। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जगन्नाथपुरी में एक सेवक था जिसकी सेवा थी पानी भरने की, दूर दूर से लोग सेवा दर्शन करने आते थे, वो बोलते मैं तो यही हूँ, कभी भी जगन्नाथ जी के दर्शन कर लूंगा, मैं तो यहीं का व्यक्ति हूँ, लोकल हूँ, कभी भी जाऊँगा भगवान के दर्शन करूंगा, ये पास में तो है। ऐसा वो करता रहा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई बिना दर्शन किए, है ना। तो ये भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, दर्शन करने के लिए लायक ललायित होना चाहिए। और दूसरा है टू सर्व इज टू सी, ऐसी सेवा करें, ऐसी सेवा करें कि भगवान भक्त के दर्शन करने आए, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज कहते हैं, ऐसी सेवा करें कि भगवान उस भक्त के दर्शन करने आए, है ना। और हम देखते हैं शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जी को जब आज्ञा मिली विदेशों में जाके प्रचार करने के लिए, शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में थे प्रतिदिन, शिला प्रभुपाद रात को राधा दामोदर मंदिर में जो समाधि है रूप गोस्वामी जी की, वहां पे वो झाड़ू लगाया करते थे और रो रो कर चिल्ला चिल्लाकर प्रार्थना करते थे रूप गोस्वामी पाद जी से कि मुझे सामर्थ्य दीजिए मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। और एक दिन उनको स्वयं रूप गोस्वामी जी के दर्शन हुए और रूप गोस्वामी ने कहा कि आप घबराइए मत, आपको पूरा सबका आपके ऊपर पूरी कृपा है, आप चाहिए आपका प्रचार निश्चित रूप से सफल होगा। और देखते हैं प्रभुपाद फिर जलदूत में जाते हैं, वहां को दो हृदय के हार्ट अटैक भी होते हैं, फिर उनको भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान उनको आश्वासन देते हैं, कौंते प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसके बाद जब प्रभुपाद अपने एक स्टोर फ्रंट में प्रचार शुरू करते हैं तो उनकी भेंट हॉवर्ड से होती है जो कि बाद में बनते हैं हाइग्री प्रभु। हॉवर्ड एक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। प्रभुपाद कहते हैं क्या तुम मेरे लिए कुछ सेवा कर पाओगे, तो प्रभुपाद के पास बहुत मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखे हुए उनके भगवत गीता के वो थे, बोले आप इसकी एडिटिंग कीजिए। तो उन्होंने एडिटिंग करनी शुरू कर दी, फिर प्रभुपाद ने बोला कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ आके रहना शुरू कर देते, तो हॉवर्ड ने आके प्रभुपाद के साथ रहना शुरू कर दिया। एक बार प्रभुपाद कहीं बाहर गए थे तो हॉवर्ड अपने कुछ साथियों के साथ पूरा कमरा उन्होंने साफ कर दिया, कमरे को सजा दिया, पर्दे लगा दिए और कुछ फोटो चिपका दिए, क्योंकि जो हॉवर्ड था पहले वाराणसी में आया था भारत में, उसने कुछ फोटोज कुछ उसको बहुत जिज्ञासा लगे, अजीब अजीब सी फोटोग्राफ्स थी, हनुमान जी उसको लगे बहुत बड़ी एक जंगली बिल्ली है, शिव जी हनुमान जी इत्यादि उसने बहुत रुचिकर इंटरेस्टिंग फोटोज लगी, उन्हें सब फोटोज लगा दी। प्रभुपाद आए तो बहुत प्रसन्न हुए, सबकी फोटोज देखी और अंत में जब प्रभुपाद जी ने एक फोटो देखी प्रभुपाद तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। तो किनकी फोटो थी, प्रभुपाद हैरान हो गए, षटभुज चैतन्य महाप्रभु की, कैसे वहां प्रकट हो गए आप देखिए स्टोर फ्रंट में। और इसी ढंग से सैन फ्रांसिस्को में मालती माता प्रभुपाद के सामने छोटी सी गुड़िया लेके आई और वो कौन थे फिर बाद में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो जब भक्त की सेवा को देखकर उस सेवा से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि स्वयं भक्त के दर्शन करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं भक्तों को गुणों के देखकर। पृथ्वी महाराज अपना यज्ञ कर रहे थे, सोवा यज्ञ था, इंद्र ने आके यज्ञ को तहस नहस कर दिया, आके घोड़ा चुरा लेते थे। पृथ्वी महाराज ने उनकी हत्या करने चाही, ब्राह्मणों ने रोका, उन्होंने बोला हम मंत्र का उच्चारण करके इंद्र की हत्या कर देंगे। तभी वहां पे ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते यज्ञ को बंद कर दो। अब देखिए सारी की सारी गलती देखी जाए तो इंद्र की थी, फिर भी ब्रह्मा जी ने आगे देखिए अब यज्ञ बंद कर दो। पृथ्वी महाराज ने वहीं यज्ञ बंद कर दिया, सोवा यज्ञ था। और जैसी यज्ञ बंद किया तभी वहां पर भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ के प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं अहम त्वं गुणशील यंत्रिता, मैं तुम्हारे गुणों से और तुम्हारी शीलता से बिल्कुल बंदी बन गया हूं। आई एम कैप्टिवेटेड बाय योर गुड क्वालिटीज। तो भक्तों के गुणों से आकर्षित होकर भगवान वहां प्रकट हुए। इसी प्रकार हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे, उन्होंने 7 संकीर्तन की पार्टीज बनाई और हर संकीर्तन पार्टी में चैतन्य महाप्रभु अपना विस्तार किया, नृत्य कर रहे हैं। और जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले राजा प्रतापरुद्र को महाप्रभु ने देखा, वो राजा थे और स्वयं झाड़ू लगा रहे थे रथ के आगे। इससे पहले राजा प्रतापरुद्र की बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करें, लेकिन महाप्रभु उनको मौका नहीं दे रहे थे कि उनको दर्शन कर सके। महाप्रभु ने बोला मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक विषय राजा का कैसे दर्शन करूं, कैसे उससे मिलूं। भक्तों ने बहुत प्रयास किया, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, रामानंद राय, और जब कोई भी उपाय सफल नहीं हो रहा था तो प्रतापरुद्र ने बोला कि अब मेरा जीना व्यर्थ है, ऐसे जीने का क्या लाभ अगर मैं भगवान के दर्शन ही ना कर पाऊं। वो इतने उत्सुक थे। और जब उसी राजा को चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा में झाड़ू लगाते हुए देखा, महाप्रभु उनकी विनम्रता से बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर जब महाप्रभु ने अपना विस्तार 7 संकीर्तन पार्टी में किया तो ये जो दुर्लभ दर्शन थे ये राजा प्रतापरुद्र को प्राप्त हुए। वो देख सके एक साथ, वाह कि भगवान एक साथ 7 पार्टियों में नाच रहे हैं। हर एक पार्टी सोची थी महाप्रभु तो मेरे साथ है मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन वो 7 पार्टीज में थे और ये दर्शन केवल कुछ ही भक्तों का हुआ और उनमें से राजा प्रतापरुद्र थे। तो भक्तों की विनम्रता को देखकर भगवान अपने दर्शन देते हैं उनसे आकर्षित होकर। इसी ढंग से हम देखते हैं मुकुंद जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, जिनका गाना चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगता था। शिवा सांगन में महाप्रकाश लीला के दौरान महाप्रभु ने प्रत्येक भक्त को बुलाया और बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, सबकी इच्छाएं पूरी की। सब भक्तों को बुला लिया लेकिन भगवान मुकुंद को नहीं बुला रहे थे। और मुकुंद भी पास के कक्ष में एकदम कान लगा के खड़े थे कि कब भगवान मुझे पुकारेंगे। शिवास ठाकुर महाप्रभु के पास गए कि आप मुकुंद आपको इतना प्रिय है आप उसको क्यों नहीं बुला रहे। महाप्रभु ने बोला उस अपराधी का नाम मत लो। बोले क्या अपराध किया है? कह कभी तो वो बहुत विनम्र बन जाता है, कभी लोहे की छड़ी से मेरी पटाई करता है। अरे हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा अपराध करते हुए। बोले वो कभी तो वैष्णवों के बीच में आता है, नाचता है, गाता है, बहुत विनम्रता दिखाता है, फिर कभी निराकारियों के बीच में चला जाता है और योग विशिष्ट को मानता है। हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति से अलावा किसी और विधि को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो लोहे की छड़ी से मेरी पिटाई करता है, तो मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। जब ये सुना तो मुकुंद जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बोला अब तो जीवन बर्बाद है, मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। श्रीवास ठाकुर बाहर आए और सब लोग भक्त लोग बड़े दुखी। तो मुकुंद ने श्रीवास ठाकुर से बोला कृपया करके इतना पूछ लीजिए कभी कभी भगवान अपना दर्शन देंगे, कंफर्म कर लो जीवन त्यागने से पहले कभी कुछ दर्शन देंगे। तो बोला महाप्रभु कभी कोई चांस है दर्शन देने का? उस मुकुंद को, उस अपराधी को, उसको बोल दो 1 करोड़ जन्म के बाद उसको दर्शन मिलेंगे। जब मुकुंद ने सुना 1 करोड़ जन्म के बाद दर्शन मिल जाएंगे, उसने नाचना शुरू कर दिया। वाह महाप्रभु मुझे दर्शन देंगे 1 करोड़ जन्म के बाद, पक्का तो हो गया ना, अश्योर भगवान ने बोला है, निश्चित रूप से वाणी सत्य होगी। उन्होंने जब देखा उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, महाप्रभु ने तुरंत उनको बुला लिया और मुकुंद को दर्शन दे दिए। बोले पहले तो तुम अपराधी थे लेकिन अब मैं तुम्हारे प्रेम और तुम्हारा मेरे वचनों में जो विश्वास है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये है हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मुकुंद ये भी सोच सकता था, 1 करोड़ जन्म बाकी सबको तो दे दिया, अभी मुझे 1 करोड़ जन्म के बात कर रहे हैं, ये तो भेदभाव वाली बात हो गई, और क्या है, मैंने ऐसा कौन सा गलत अपराध कर दिया, ऐसा कुछ नहीं सोचा। 1 करोड़ जन्म बाद भगवान देंगे तो सही दर्शन, और इस विश्वास, पूरे विश्वास के साथ वो नृत्य करने लगे। तो भक्ति में हमारा विश्वास गुरु के वचनों में, भगवान के वचनों में अत्यंत आवश्यक है। ध्रुव महाराज क्रोध में जा रहे थे, मुझे ब्रह्मा जी से भी ज्यादा ऊपर का पद चाहिए। नारद मुनि ने बोला, कहां जा रहे हो, छोटे बच्चे हो, घर में जाके आराम करो। बोला, नहीं नारद मुनि जी, कुछ मदद कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो साइड में हो जाओ। नारद मुनि ने पूरा प्रोसेस बताया, मंत्र बताया, कैसे फिर अर्चविग्रह की सेवा करनी है। ध्रुव महाराज ने बड़ी तीव्रता से उस प्रोसेस को फॉलो किया, उस प्रोसेस को फॉलो किया तो उनको भगवान के दर्शन हुए। तो यानी पूरा गुरु और कृष्ण के शब्दों में पूर्ण विश्वास, और परिणाम के लिए पूरा धैर्य, धैर्य, मुकुंद को पूरा धैर्य। 1 करोड़ जन्म आप सोचिए, पूरा धैर्य, 1 करोड़ जन्म बाद दर्शन मिल तो जाएंगे। तो दर्शन, भक्ति में उत्साह और जो धैर्य, इन दोनों का मिश्रण होता है, तो ये वास्तव में शरणागति का लक्षण है। केवल उत्साह है, धैर्य नहीं है, तो एक तरह से रजोगुण होता है, धैर्य है नहीं, उत्साह ही उत्साह है। और केवल धैर्य है, उत्साह नहीं है, तो हो सकता है तमोगुण का लक्षण हो। धैर्य है, आराम से करेंगे, ऐसी भी जल्दी क्या है। तो उत्साह के साथ साथ धैर्य होना, ये वास्तव में शरणागति है। मुकुंद ने इसको प्रदर्शित किया, तो भगवान उसकी शरणागति से पूरे आकर्षित हुए। इसी ढंग से हम देखते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन सिद्ध बुकुल में बैठ के हरिनाम का जप करते थे। भगवान उनके हरिनाम के प्रति आकर्षण और उनकी विनम्रता से इतने आकर्षित हुए, प्रतिदिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके उनको अपने दर्शन देते थे। तो भगवान को हम आकर्षित कर सकते हैं भक्त अपने गुणों के द्वारा। इसलिए भक्त कभी मांग नहीं करते आप प्रकट हो, वो इस ढंग से सेवा करते हैं कि भगवान उनके सामने प्रकट हो जाए। एक बार इस अनंग मोहन प्रभु यहां पर आए थे कलकत्ता से, उन्हें बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया था कि एक बार एक कलकत्ता मंदिर में रात को 2-2:30 बजे फोन आया कि एक वृद्ध महिला है जो कि हमारी डोनर है वृंदावन से, तो आप कृपया करके आप कुछ भक्तों के साथ जाइए, कुछ कीर्तन कीजिए वहां पे। तो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फटाफट कोई भक्त, एक भक्त को लिया और एक लेमिनेशन उठाई राधा कृष्ण की ओर चल पड़े, और वहां पे माता जी को उस लेमिनेशन के दर्शन कराए, कीर्तन किया, और कुछ दिनों को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो मालूम चला वो माता जी वो थी, उन्होंने क्या डोनेशन दी थी, उन्होंने राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह को स्पॉन्सर किया था। और जो कलकत्ता मंदिर के प्रेसिडेंट जो लेमिनेशन ले गए थे, वो अपने मंदिर राधा गोविंद जी का लेमिनेशन नहीं था, वो राधा श्याम सुंदर जी का लेमिनेशन था। आप देखे कहां वो माता जी वृंदावन कोलकाता में आए, मारवाड़ी माता जी थी, और उनको राधा श्याम सुंदर जी ने अपने दर्शन देने थे अंतिम समय में। भगवान भक्तों से क्यों सेवा को भूलते नहीं, भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए, नहीं तो क्या दुख बनती है। अक्सर अपने हम यहां पे कोई जाएंगे तो राधा राधिकांत की लेमिनेशन लेके जाएंगे, तो राधा श्याम सुंदर जी की लेमिनेशन लेके और उनको वृंदावन के जहां उन्होंने जो डोनेट किया था उसको भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो भगवान पूर्ण रूप से कृतज्ञ रहते हैं भक्तों के प्रति, भगवान जो भक्तों की हुई सेवा को कभी भूलते नहीं। तो हम लोग देखते हैं जन्माष्टमी में अक्सर कई लोग वॉलंटियर फॉर्म भरते हैं, बोलते हैं जी सेवा देना ठाकुर जी के सामने, बस आज तो ठाकुर जी का जन्मदिन है, टस से मस नहीं होंगे, मैं और ठाकुर जी बस लगे रहेंगे दर्शन, है ना। और एक भक्त होते हैं कहीं भी दे दीजिए सेवा, तो कई भक्तों को सेवा मिलती, जाओ दूर पार्किंग में 3 किलोमीटर दूर, सुबह सुबह दर्शन किया, पूरा दिन दर्शन ही नहीं। तो ऐसे एक भक्त अपना अनुभव जा रहे थे, उनका हुआ पार्किंग में कहीं मिली उनकी सेवा, रात के 12:30 बज गए, लोग गालियां दे रहे हैं, ट्रैफिक जाम, ये लगे हुए हैं उसमें, और उनकी इच्छा हो रही है अभिषेक खत्म हो गया होगा, आरती चल रही होगी, काश में दर्शन कर पाता, बहुत ललाले थे। तभी एक भक्त गाड़ी से रुकते हैं, बोले प्रभु जी बहुत सेवा कर रहे हो, चरणामृत ले लो, और उन भक्त ने उनको चनामृत दिया। इस ढंग से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर। तो हमें यह नहीं होना चाहिए, हाँ हमने दर्शन निश्चित रूप से दर्शन के लिए लालायित रहना है, लेकिन टू सर्व इज टू सी, इस ढंग से हम सेवा करें इतने अच्छे गुणों के साथ कि भगवान हमारी सेवा से आकर्षित हो जाए। तो अब हम चर्चा करते हैं कि एक बार जीव क्यों नहीं भगवान के दर्शन कर पाता और उसको क्या करना चाहिए कि हम दर्शन कर पाए। निश्चित रूप से दर्शन करने के लिए उत्साह भी चाहिए, उत्सुकता भी चाहिए और साथ साथ में गुण भी चाहिए। डिजायर भी स्ट्रांग होना चाहिए और क्वालिफिकेशंस भी होने चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो छठे स्कंद के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में जब वृत्तासुर प्रकट होते हैं यज्ञ से तो देवतागण फिर से बड़े भयभीत हो जाते हैं और इंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान से। इस प्रार्थना में इंद्र कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते, हम इसलिए देखने में असमर्थ हैं। वो कह रहे हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाते। क्यों? हम इसलिए देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। हम सब अपने आप को इंडिपेंडेंट गॉड समझते हैं। अगर हम ही स्वतंत्र भगवान हैं तो हम भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे? तो इस भावना को दूर करने के लिए कि हम स्वतंत्र भगवान नहीं हैं, हम भगवान के सेवक हैं, इसके लिए साधना भक्ति है। साधना भक्ति के माध्यम से हम अपने अंदर उस इच्छा को भी प्रबल कर सकते हैं और अपने अंदर उन गुणों को भी विकसित कर सकते हैं जिसको हम भगवान से को अपने प्रति आकर्षित कर सके और भगवान हम पे कृपा करके हमारे सामने प्रकट हो। गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या तु अन्यया अहम एव विधो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कि केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुम दृष्टुम, पहले मुझे जानेंगे और फिर आप मुझे देखेंगे, प्रवेष्टुम च परंतप, फिर आप प्रवेश करेंगे, यानी मेरे तत्व को आप विस्तार से जानेंगे या भगवान की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले भगवान को जानने, भगवान को दर्शन करने से पहले भगवान को जानना आवश्यक है। और प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए साधना भक्ति, रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, इसका प्रैक्टिस करना आवश्यक है। देखिए, संसार में कोई भी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो रेगुलेटेड होती है। हमें यहां से पश्चिम यार भी जाना हो तो कितनी रेड लाइट्स हमें रेगुलेट करती हैं। ऐसे तो नहीं कैसे ही गाड़ी चला के हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। नियम है, रेगुलेशंस है, तभी हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे। तो क्या इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए कुछ रेगुलेशंस की आवश्यकता नहीं है? भक्ति विमसिकली नहीं होती, कुछ भी कर दिया कैसे भी कर दिया। भक्ति के लिए आचार्यों के द्वारा बताई हुई पूरी एक पद्धति है, उसको फॉलो करेंगे निश्चित रूप से साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। भाव भक्ति में जब भक्त प्रवेश करता है आसक्ति के बाद भाव, तब उसको भगवान का प्यारी भरी दर्शन प्राप्त होते हैं, तब वो योग्य बनता है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो साधना भक्ति को बहुत ही उत्साह के साथ करना। प्रभुपाद कह रहे हैं पूरे उत्साह के साथ, जैसे कि ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से विस्मित अवस्था में थे। कहां से मैं उत्पन्न हुआ हूं, क्या मुझे करना है, कुछ पता नहीं। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार और पूर्ण रूप से बहुत तूफानी हवाएं चल रही हैं और कमल की नाल जोर जोर से हिल रही है और ब्रह्मा जी बिल्कुल अकेले पूरी सृष्टि में। आप सोचिए क्या स्थिति होगी ब्रह्मा जी की। और तब भगवान ने उनको एक आवाज सुनाई दी, तप तप। और ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक, दिव्य सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की और फिर उनको भगवान के दर्शन होते हैं। भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात लोक के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, केवल दर्शन ही नहीं करते, भगवान ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, अब सृष्टि की रचना करो। पहला हैंडशेक सृष्टि का ब्रह्मा जी और कृष्ण के, भगवान के बीच में हुआ। और इसी के बाद फिर भगवान उनको बोलते हैं कि हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरे हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। भगवान कह रहे हैं जो मैंने आपको तपस्या का आदेश दिया था वो तपस्या ही मेरा हृदय मेरी आत्मा है और वो तपस्या मुझसे अभिन्न है। यानी हमारी तपस्या क्या है, क्या है हमारे लिए तपस्या? 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, 4 नियमों का सख्ती से पालन करना, पुस्तकों का अध्ययन करना, श्रवण करना, प्रैक्टिकली सेवा करना, एकादशी का व्रत रखना, फेस्टिवल्स में फास्टिंग रखना, दान देना भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए, ये सब हमारी तपस्या है। तो भगवान बता रहे हैं ये तपस्या मुझसे अभिन्न है, और इसी तपस्या को करके, जिस प्रकार से भगवान की बताई तपस्या का पालन करके ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हुए, इसी प्रकार से इस तपस्या का शक्ति से पालन करके हम भगवान के दर्शन करने के योग्य बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास सब कुछ है भगवान का दर्शन करने के लिए। हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अभय नत्मो नाम नामिनो। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। स्वयं राधा कृष्ण प्रतिक्षण तैयार खड़े हैं हमारे पर कृपा करने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए। दर्शन क्या? हमारे जीवा पे नृत्य करने के लिए। क्या करना है हमें? हरि नाम की सही ढंग से शरण लेनी है, बस। प्रतिक्षण ललायत है, लेकिन हम लोग क्या हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड। प्रतिदिन हमारे नाम का जप करते हैं, फैमिली रिपीट्स कंटेंट। तो कितनी बारी सुन चुके हैं हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप होना चाहिए, होता है नहीं होता, किसी ढंग से हम कर देते हैं। हरि नाम तो है, इसके जप में कोई नियम तो है नहीं, कभी भी कर सकते हैं, है ना, कभी भी कर लेंगे। कभी ध्यान पूर्वक हुआ नहीं हुआ, हमारे लिए केवल औपचारिकता बन गई है। हम मंदिर में प्रभुपाद लिख रहे हैं इसी 11वें अध्याय में कि एक ऑफिशियल जो विजिटर है उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। हम मंदिर में कोई ऑफिशियल विजिटर बन के ना आए, जब हमारा ऑफिशियल मेडिटेशन ना हो, जो इसकी महिमा को जाने, हरिनाम की महिमा, अर्च विग्रहों की महिमा, गुरु की महिमा, भक्तों की महिमा, जब तक इसकी महिमा को हम बार बार याद नहीं दिलाते रहेंगे, हमारे लिए सब ये बहुत साधारण बन जाता है। और जब तक इस साधना को सही ढंग से नहीं करेंगे, किस प्रकार से हमारा शुद्धिकरण होगा, किस प्रकार से भगवान को आकर्षित करेंगे? तो इसलिए अति आवश्यक है। और इसकी महिमा को हम हमेशा याद रख सकते हैं प्रभुपाद के दिए हुए तात्पर्यों को बार बार पढ़ना। प्रभुपाद कहते हैं मुझे अपने भक्तों से यही शिकायत है कि वो मेरी पुस्तकों को पढ़ते नहीं है। और देखा जाए हमारे समुदाय में भी सभी भक्त बहुत सिंसियर हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम सेवा करते हैं, लेकिन जो हमने भी लोगों से बातचीत की और पाया है, रीडिंग में हम सब बहुत पीछे हैं। और जब तक ये प्रभुपाद के तात्पर्यों को बार बार नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद कहते हैं एक जीवन है, एक जीवन आप समर्पित कर दीजिए मेरी पुस्तकों को पढ़ने में, बस। अगर प्रभुपाद के तात्पर्यों को हम बार बार पढ़ेंगे, निश्चित रूप से बार बार हम जानेंगे भक्तों की क्या महिमा है, हरिनाम की क्या महिमा है, अर्च विग्रह की क्या महिमा है, फिर हमसे गलती नहीं होगी। हम हमेशा सावधान रहेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक हम जप करेंगे, अच्छे ढंग से अर्च विग्रहों की सेवा करेंगे, तो यह अति आवश्यक है। वेदांत सूत्रों में वर्णन आता है प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासाता, यानी कि बार बार अगर रिपीट करेंगे डिवोशनल एक्टिविटीज को, अभ्यास आता, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यास आता, बार बार अभ्यास करेंगे तो इस अभ्यास से भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, हमारे सामने प्रकट करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बार बार अगर सही स्तोत्र से हम सुनेंगे भगवान के विषय में, तो भगवान हमारे लिए बहुत प्रिय हो जाएंगे। द मोर वी हियर फ्रॉम द बोनाफाइड सोर्स द कृष्णा बिकम्स डियर टू अस, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो वैसे तो हम एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कितनी बारी जैसे कि एक टेलीफोन के एडवर्टाइजमेंट बार बार सुनेंगे तो टेलीफोन हमें प्रिय हो जाता है, तो इससे कौन सी बड़ी बात है? बोनाफाइड सोर्स से सुनने की आवश्यकता है? एडवर्टाइजमेंट कहीं से भी सुन लो, वो फोन हमें प्रिय हो जाएगा। लेकिन भगवान के विषय में जब सुनते हैं, इसकी एक विशेष बात है। जैसे कि रुक्मिणी बार बार नारद मुनि से सुनती थी, तो रुक्मिणी का इतना आकर्षण हो गया कृष्ण से कि रुक्मिणी ने जब उनका विवाह शिशुपाल से होने लगा तो रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण जी के हाथ एक ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजा और जो ब्राह्मण ने पत्र कृष्ण को दिया तो पत्र को पढ़ के कृष्ण ने ब्राह्मण जी से क्या कहा, मैं भी पिछले कई रातों से सो नहीं पा रहा हूं रुक्मिणी की याद में। कमाल है कि वो रुक्मिणी देवी कृष्ण के बारे में सुन रहे नारद मुनि से, रुक्मिणी तो आकर्षित हो ही रही है, जो भक्त कृष्ण के बारे में सुन रहा है कृष्ण भी उससे प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हम लोग यहाँ साधारण जनता फिल्म मैगजीन्स पढ़ती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की लीलाओं को पढ़ती है, उनका श्रवण कीर्तन करती है, आज ये हो गया उसका ये अफेयर चल रहा है उसका ये हो गया, तो फिल्म स्टार्स को मालूम थोड़ी है कि कौन सा उनका भक्त वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उनको तो पता ही नहीं वो अपनी दुनिया में है। नहीं, भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान के विषय में हम चर्चा करते हैं, भगवान के विषय में बार बार सुनते हैं तो भगवान भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर भगवान महाप्रकट हुए। तो इसलिए बार बार हमने सुनना, बार बार अध्ययन करना और पूरा विश्वास होना, यस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता यंत प्रकाशंता महात्मना। जितना हमें भगवान में विश्वास है उतना गुरु के वाक्यों में विश्वास होना चाहिए, तब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे अंदर वो उत्सुकता नहीं है, वो विश्वास नहीं है, तो हम परमहंसों का आश्रय ग्रहण करें। जैसे कि हम देखते हैं रामानुजाचार्य जी के की भेंट हुई एक व्यक्ति से, धनुर्दास, जो कि एक वैश्या से बहुत आकर्षित थे। तो रामानुजाचार्य जी ने उनपे कृपा की, बोला आप आइए, क्या आप भरी बीच सड़क में इस वैश्या की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, आपको उतना भी श्रम नहीं आया, संकोच नहीं आया, रंगनाथ जी की शोभा यात्रा चल रही है और सामने यहाँ शोभा यात्रा निकली है, शोभा यात्रा के सामने वो खड़े हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इतना शोर मच रहा है, कीर्तन हो रहा है, बीच सड़क के अंदर एक पुरुष स्त्री की आंखों की तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, रामाचार्य इसको बुलाया क्या था ऐसा? बोले उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं। रामाचार्य बोला आना एक बार, मैं आपको इससे भी सुंदर आंखें दिखाऊंगा। तो बुलाया, धनुर्दास आए। धनुर्दास के आने से पहले रामाचार्य जी रघुनाथ जी से प्रार्थना की कि इसको अपना सौंदर्य दिखाइए जिससे कि आपसे आकर्षित हो जाए। और जैसे ही धनुर्दास ने रंगनाथ जी के दर्शन किए वो देखते ही रह गए। पहले उन्होंने दर्शन किए तो रंगनाथ जी इतने आकर्षक नहीं लगे, लेकिन परमहंस रामानुजाचार्य की कृपा से और भगवान ने अपना सौंदर्य उनके सामने प्रकट किया तो वो उनके प्रति आकर्षित हो गए और बहुत अच्छे भक्त बने। तो हम लोग भगवान के दर्शन निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसके लिए हमारी इच्छा प्रबल होनी चाहिए और हमारे अपने अंदर गुण विकसित करने चाहिए जिससे हम भगवान को आकर्षित कर सके। इच्छा और एक गुण हम विकसित कर सकते हैं साधना भक्ति के नियमों को अच्छे ढंग से पालन करके, पूरा विश्वास रख के प्रभुपाद जी की वाणी में। प्रभुपाद जी की हमारे इतनी विशेष कृपा है, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अगर हम इस सौभाग्य को नहीं समझेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, ऐसा श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं। और देखते हैं हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। क्या हमें लगता है कि हम अपने जीवन में प्रभुपाद जी की पुस्तकों को कम से कम 3 या 4 बार ही पढ़ लेंगे? एक बार ही पढ़ने से तो कुछ समझ में भी नहीं आता। प्रभुपाद जी के इतने शिष्य ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने कितनी ही बारी प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ रखा है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं सोलनेस प्रहलाद आनंद स्वामी महाराज, उनको पूरी कृष्णा बुक याद है वर्ड बाय वर्ड। अगर आप बोलेंगे महाराज पूरा कृष्णा सुनाइए, एक शुरू हो जाएंगे, एक एक शब्द याद है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पूरा प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ऐसे याद करके रखा हुआ है, ये अति आवश्यक है, तभी हम अपने इस मार्ग पर फोकस रहेंगे। तो ये हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो हमें तात्पर्य दिए हैं ये बहुत ही अमूल्य हैं, इनका हमें पूरे लाभ उठाना चाहिए। हरि नाम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, अर्च विग्रहों की सेवा करें। निश्चित रूप से जब इस साधना भक्ति को हम पूरे उत्साह से पालन करेंगे तो हमारे अंदर भी प्रबल इच्छा होगी, हमारे अंदर भी सारे गुण विकसित होंगे और हम भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे और भगवान के हम दर्शन फेस टू फेस कर पाएंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चंस और कमेंट्स?
बहुत बहुत धन्यवाद श्रोचन के लिए। मुझे आपने एक प्रभुपाद जी का वो पास्टर बताया था कि जब वो बोट पे जा रहे थे तो उनको हृदयाघात हुआ था 2 बार, प्रभुपाद जी जब जा रहे थे। और फिर आपने बताया था कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कौन तेरा प्रतिजारी नाम है भक्त प्रलश्यति, तो क्या ये हमारे भौतिक शरीर के लिए भी लागू होता है या सिर्फ हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए?
जी का अच्छा प्रश्न है कि जब भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये शरीर के लिए या भक्ति के लिए? दोनों के लिए हो सकता है। अगर प्रभुपाद जी के शरीर से भगवान के नाम का प्रचार होना है, भगवान की महिमा का प्रचार होना है, तो उसकी भी रक्षा करेंगे। दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन पूर्ण मुख्यतः जो भक्ति की रक्षा भगवान करते हैं, भगवान देखेंगे किस प्रकार से मेरे भक्त का पता ना हो, ये भक्ति में आगे और उन्नति करे, उस ढंग से भगवान रक्षा करते हैं।
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच लेक्चर के लिए। मुझे जैसे आपने लेक्चर बताया कि ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं कि जो तपस्या है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ। लेकिन हम जैसे तपस्या करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है और काफी काफी कष्ट भी आते हैं, तो इसको कैसे समझें? जैसे भगवान बोलते हैं कि मधुरम है हर तरह से, लेकिन जो हम तपस्या करते हैं तो हमको बहुत डिफिकल्टी होती है।
अच्छा प्रश्न है आपका कि तपस्या भगवान से अभिन्न है, तो भगवान तो अति मधुर है, तो हमें क्यों नहीं मधुर लगती तपस्या? अगर मधुर लगे तो फिर तपस्या नहीं लगेगी। तो ये प्रयास करें, अगर इस बात को ही जानेंगे कि हाँ ये भगवान से अभिन्न है, इतनी महत्वपूर्ण है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है और ये अंतरंगा शक्ति हमें भगवान के दर्शन कराएंगे, तो प्रारंभिक अवस्था में हमें तपस्या लगती है। हम देखते हैं जब शुरू शुरू में हम मंदिर में आए थे तो सुबह मंगल आरती आना बहुत मुश्किल लगता था, और बाहर का व्यक्ति सुनता है कि हम लोग 3:30 जगह आते हैं, वो कांप जाता है डर से। मैंने भी जब पहली बार सुना इसको, मैं काम गया था, मैं उन भक्तों का अलग से जाके इंटरव्यू लेता था, कैसे आप जाके आते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या होता है, क्यों होता है। बहुत बहुत ही एक अद्भुत बात है कि सुबह जाके आते हैं आप, तो बहुत मुश्किल लगता है सुबह सुबह जागना, सर्दियों में खासकर। लेकिन आप देखते हैं कि जब सुबह उठकर भगवान के इतने सुंदर दर्शन, इतना सुंदर कीर्तन, इतना सुंदर नृत्य, तो भक्त अपने आप भाग के आते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में हो, भक्त मिस नहीं करना चाहते, है कि नहीं? 7:30 बजे जब यहाँ गुरु पूजा करते हैं, भगवान उत्साह से नाचते हैं, तो लोग स्पेशली आते हैं, कुछ भी हो जाए ये दर्शन जरूर करने हैं, भक्तों को नाचते हुए देखना है। तो प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी सी तपस्या लगती है, जब हम इसके महत्व को समझते हैं और इसको करते हैं, ये भक्ति है, क्या है? प्रत्यक्ष अवगमा धर्म, तुरंत इसका प्रत्यक्ष परिणाम मिलता है। अगर हमने सुबह ध्यान पूर्वक जप कर लिया, जैसे दिन मोगलीला वो भी बता रहे थे, पूरा दिन स्मूथ होता नहीं, प्रत्यक्ष है, इसमें कोई ये हवाई बातें नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, प्रत्यक्ष है। अगर इसको सही ढंग से करेंगे तुरंत परिणाम मिलता है, तो जैसे जैसे हमें तुरंत परिणाम मिलता है, हमारी रियलाइजेशन स्ट्रांग होती जाती है, फिर हमें मधुर लगना शुरू होता है, करेंगे तो मधुर लगेगा।
ऑफिशियल विजिटर वाला जो पॉइंट था,
ऑफिशियल विजिटर,
इसमें ऑफिशियल विजिटर मतलब कि कौन से लेवल ऑफ, इसे जैसे 4 लेवल्स ऑफ वर्शिप इसे बताते हैं, फियर डिजायर एंड ड्यूटी एंड लव, तो इसमें से आई मीन ये ड्यूटी के लेवल पे हम देख रहे हैं,
ड्यूटी लेवल
मैं पूछ रहा हूँ।
हाँ हो सकता है ड्यूटी लेवल पे भी हो सकता है, ये कोई भी व्यक्ति ऐसे हम ऑफिशियल दर्शन कर रहे हैं, ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं मंदिर में, तो मुख्यतः ये कनिष्ठ अधिकारी हैं जो नए भक्त हैं अक्सर जुड़ते हैं, या फिर कई बार हम बहुत पुराने हो जाते तब भी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, तो ये हमें देखना चाहिए कभी हमारा दर्शन, हमारा जप ऑफिशियल ना हो,
डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट,
औपचारिकता औपचारिकता वश ना हो। तो जैसे हम मंदिर जब भी आए, जैसे हम सब लाते हैं इस मंदिर में, बहुत सी प्रथा है कि भगवान के लिए कुछ लेके आते हैं, फल फूल इत्यादि, कुछ ना मिलते तुलसी के दल कुछ, तो भगवान को हम कुछ पेंट कुछ दें अवश्य। भगवान हमारा सेक्रीफाइस देखना चाहते हैं कि हमने क्या सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस करेंगे तभी वो सेवा बनती है।
धन्यवाद प्रभु जी। मैं इस विचार से पूछना चाहता था और समझना भी चाहता था, जैसे आपने बताया कि भगवान का दर्शन करने का जो मूड है डिवोटी का, वो सर्विस एटीट्यूड होता है, तो इसको थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं। जब हम दर्शन करते हैं भगवान का, तो क्या मतलब है कि सर्विस एटीट्यूड होने का, या फिर टू सीज टू सर्व जैसे आप बता रहे थे, तो कैसे दर्शन करना चाहिए, क्या भगवान की सुंदरता को भोगना क्या क्या मतलब होता है, सर्विस एटीट्यूड क्या मतलब होता है, सही तरीके से कैसे दर्शन होते हैं।
बहुत सटल है, आई कैन जस्ट ट्राई। जय भगवान के सामने प्रार्थना करें, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में गाते हैं कि ये भगवान मैं इतना पापी हूँ, कृपया करके आप मुझे रिजेक्ट मत कर देना, मेरा तिरस्कार मत कर देना, तुम बिना किए अच्छे अमाल, तुम्हारे बिना मेरा और कौन है। ऐसे पद्म पुराण में एक प्रार्थना भक्त प्रार्थना करते हैं कि मैं इतने पाप किए हैं कि मैं आपके सामने कैसे आऊँ, मुझे संकोच हो रहा है आपके सामने आते हुए, लेकिन फिर भी आपके अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। इस ढंग से हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के माधुर्य का, भगवान की लीलाएं इत्यादि, और उन भक्तों की प्रशंसा कर सकते हैं जिन्होंने भगवान के इतने सुंदर श्रृंगार किए। एनीथिंग वंशीवंदन प्रभु लाइक टू ऐड समथिंग?
हरे कृष्ण भाई, हरि नाम की महिमा और अर्चित गिरा की महिमा के बारे में थोड़ा बताएं, फिर हम कैसे हमेशा याद रख सकते हैं, जो हम सुनते हैं भूल जाते हैं, उसको कैसे जीवन में उतार रहे हैं, कैसे याद रख लें हमेशा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
हमेशा सुनते रहें, हमेशा बार बार सुनते रहें, ये हमारा जीवन है। अर्चित गिरा की सेवा करना, अर्चित गिरा की दर्शन करना, ये बद्ध जीव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। हरिनाम का जप करना है, बहुत बड़ी कृपा है, साक्षात भगवान है। इसके स्मरण को कहते हैं हमारी माला में पूरा आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन, एक एक मनके से हमें पूरे भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लीलाओं में प्रकट हो सकती है, इतनी शक्ति है। तो ये कोई अतिशक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। तो बार बार जब प्रतिदिन इसको सुनेंगे पढ़ेंगे, सुनेंगे पढ़ेंगे, तब समझ में आएंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई वो प्रेमानंदे।